एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो हमें हाल के वैश्विक इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उथल पुथल भरे दौर के अंदर ले जाती है।
बिल्कुल, ये किताब है हिलेरी क्लिंटन की हार्ड चॉइसेस।
हाँ, हार्ड चॉइसेस। ये किताब असल में 2009 से 2013 तक, जब वो अमेरिका की विदेश मंत्री थीं, उनके 4 साल के कार्यकाल का एक तरह से लेखा जोखा है।
और सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है ये, मतलब ये उन मुश्किल फैसलों के पीछे की सोच, वो दबाव, वो दुविधाएं, उनको समझने की एक कोशिश है।
सही।
हिलेरी क्लिंटन, जैसा कि हम जानते हैं, येल लॉ स्कूल से ग्रेजुएट वकील रहीं, अमेरिका की फर्स्ट लेडी भी रहीं, न्यूयॉर्क से सेनेटर और फिर दुनिया के सबसे ताकतवर पदों में से एक यानी अमेरिकी विदेश मंत्री बनी।
और वो भी ऐसे समय में जब दुनिया में काफी कुछ चल रहा था। इराक युद्ध खत्म हो रहा था, अफगानिस्तान का संघर्ष जारी था, अरब स्प्रिंग शुरू हो गया था, चीन का प्रभाव बढ़ रहा था, मतलब बहुत कुछ एक साथ।
हाँ बिल्कुल, एक बहुत ही हलचल वाला दौर था वो।
तो आज इस चर्चा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्लिंटन के अनुभवों से हम क्या सीख सकते हैं, कैसे वैश्विक नेता इतनी जटिलताओं से जूझते हैं, कैसे वो कम जानकारी और अलग अलग हितों के बीच फैसले लेते हैं,
और वो स्मार्ट पावर जैसी जो बातें हैं उनका असल में मतलब क्या होता है जमीन पे।
हाँ, तो चलिए उनके विदेश मंत्री बनने तक के सफर से ही शुरू करते हैं। उनका बैकग्राउंड क्या था?
देखिए, विदेश मंत्री बनने से पहले का उनका अनुभव काफी व्यापक था। ये लॉ स्कूल से कानूनी समझ तो थी ही, फिर फर्स्ट लेडी के तौर पर उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ केयर, मानवाधिकार जैसे मुद्दों पर काम किया, तो एक वैश्विक समझ वहां से बनी।
अच्छा।
फिर जब वो न्यूयॉर्क से सेनेटर बनी तो उनका कार्यकाल 9/11 हमलों के ठीक बाद शुरू हुआ था।
ओह, तो इसका मतलब सुरक्षा और विदेश नीति तो उनके लिए शुरू से ही अहम हो गए होंगे।
बिल्कुल, उन्होंने सेनेट आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में काम किया जो सेना और डिफेंस बजट वगैरह देखती है, तो वहां से उन्हें रक्षा नीति, सैन्य रणनीति की गहरी समझ मिली। ये अनुभव बाद में बहुत काम आया।
और फिर आया 2008 का वो राष्ट्रपति चुनाव। ओबामा के खिलाफ वो एक बहुत मजबूत दावेदार थी, काफी कड़ा मुकाबला था वो।
हाँ, बहुत कड़ा।
और उसके बाद जब ओबामा जीते तो उनका हिलेरी क्लिंटन को विदेश मंत्री पद का ऑफर देना, ये कई लोगों को चौंका किया था।
हाँ बिल्कुल, और ये क्लिंटन के लिए भी एक हार्ड चॉइस था, है ना, जैसे किताब का नाम ही है।
सही।
मतलब एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी के साथ काम करना जिसके खिलाफ आपने इतना कड़ा चुनाव लड़ा हो, आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने ये कदम उठाया।
इसी को वो टीम ऑफ राइवल्स कहते हैं ना।
हाँ वही, जहां पहले के विरोधी एक बड़े लक्ष्य के लिए साथ आते हैं। और प्रशासन के शुरुआती लक्ष्य साफ थे, दुनिया में अमेरिका की थोड़ी जो छवि बिगड़ी थी उसे सुधारना, सहयोगियों के साथ रिश्ते फिर से मजबूत करना और इराक युद्ध को एक जिम्मेदारी से खत्म करना।
और यहीं पर मुझे लगता है वो स्मार्ट पावर वाली बात सामने आई। ये शब्द सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस समय इसका मतलब क्या निकाला गया? ये पहले से अलग कैसे था?
देखिए, स्मार्ट पावर का जो मूल आइडिया था वो ये था कि अमेरिका को सिर्फ अपनी फौजी ताकत पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिए, जैसा शायद पहले ज्यादा होता था, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से अपने असर के सारे तरीके, डिप्लोमेसी यानी कूटनीति, आर्थिक मदद या दबाव, कल्चरल एक्सचेंज, कानूनी तरीके और हाँ, जरूरत पड़ने पर सैन्य बल, इन सब का एक होशियारी से मिलाजुला इस्तेमाल करना चाहिए।
अच्छा, मतलब सही काम के लिए सही औजार चुनना।
बिल्कुल, असली ताकत सिर्फ फौज में नहीं है, बल्कि हर तरह के प्रभाव को सही टाइम पर सही मात्रा में इस्तेमाल करने की कला में है।
विदेश मंत्री के तौर पे क्लिंटन ने यात्राएं तो जबरदस्त की, सुनाए 112 देश, करीब 10 लाख मील।
हाँ, ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं।
इतनी यात्राओं से तो यकीनन दुनिया की जमीनी हकीकत की एक गहरी समझ बनी होगी, और शायद इसी समझ ने उनकी कुछ बड़ी रणनीतियों को शक्ल दी, जैसे कि वो एशिया पिवट।
बिल्कुल बिल्कुल, एशिया पिवट या एशिया की ओर सामरिक संतुलन बनाना, ये उनके कार्यकाल की एक बड़ी पहचान है। इसका मकसद था अमेरिका का ध्यान, जो पारंपरिक रूप से यूरोप और मिडिल ईस्ट पर ज्यादा रहता था, उसे तेजी से उभरते हुए और रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी एशिया पैसिफिक रीजन की तरफ मोड़ना। इसमें जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया जैसे जो पुराने सहयोगी थे उनके साथ रिश्ते और गहरे करना शामिल था।
और चीन के साथ रिश्तों को संभालना भी इसी का हिस्सा होगा, वो तो हमेशा से ही एक जटिल मसला रहा है।
हाँ, चीन तो इस नीति के बिल्कुल केंद्र में था। एक ऐसा रिश्ता जिसमें सहयोग की भी गुंजाइश थी, जैसे क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल इकोनॉमी पर, लेकिन साथ ही गंभीर कॉम्पिटिशन और मतभेद भी थे, जैसे साउथ चाइना सी या मानवाधिकार पर।
अच्छा,
इसके अलावा इसी पॉलिसी के तहत म्यांमार, बर्मा जैसे देशों के साथ दशकों बाद रिश्ते फिर से कायम हुए। तो मतलब पॉइंट ये था कि भविष्य के ग्लोबल पावर बैलेंस को पहचानो और अपनी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एनर्जी सही जगह लगाओ।
इसी दौरान इराक युद्ध तो औपचारिक रूप से खत्म हुआ, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो चुनौतियां थी वो तो बनी रहीं।
हाँ, वो तो बनी रहीं। और इन्हीं सब मुश्किलों के बीच एक बहुत बड़ा, एक नाटकीय क्षण आया मई 2011 में, ओसामा बिन लादेन पर पाकिस्तान में जो छापा मारा गया।
हाँ, वो तो ऐतिहासिक था।
और क्लिंटन इस ऑपरेशन की एक मुख्य समर्थक थी। ये फैसला लेना कितना मुश्किल था, ये किताब में बहुत विस्तार से है। इंटेलिजेंस पक्की नहीं थी, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का सवाल था, ऑपरेशन फेल होने का खतरा था। ये हार्ड चॉइसेस का एक सटीक उदाहरण है।
ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर भी उस समय काफी तनाव था।
बिल्कुल, ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए एक मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रैटेजी अपनाई गई। इसमें कड़े अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रतिबंध लगवाना शामिल था, जिसके लिए रूस और चीन जैसे देशों तो देश साथ लाना पड़ा। और साथ ही डिप्लोमेसी के दरवाजे भी खुले रखे गए, जिसने बाद में जाकर वो न्यूक्लियर डील की नींव रखी। तो ये भी मल्टीलैटरल कोऑपरेशन और स्मार्ट पावर के इस्तेमाल का एक अच्छा उदाहरण है।
रूस के साथ भी एक कोशिश हुई थी रिश्तों को सुधारने की, जिसे रीसेट कहा गया था।
हाँ, रीसेट। शुरुआत में कुछ कामयाबी मिली भी, जैसे न्यू स्टार्ट ट्रीटी साइन हुई, जिससे परमाणु हथियारों को कम करने की बात थी। लेकिन फिर व्लादिमीर पुतिन की वापसी हुई और दूसरे जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़े, तो वो रीसेट ज्यादा लंबा चला नहीं। रिश्ते फिर से तनाव भरे हो गए।
एक तरफ रूस के साथ ये चल रहा था और तभी मध्य पूर्व में एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड सी उथल पुथल शुरू हुई, अरब स्प्रिंग। उसको संभालना तो और भी बड़ी चुनौती रही होगी।
ओ बिल्कुल, ट्यूनिशिया से शुरू हुई वो लहर मिस्र, लीबिया, सीरिया और कई देशों में फैल गई, और इसने अमेरिकी विदेश नीति के सामने बहुत मुश्किल सवाल खड़े कर दिए।
जैसे कि?
जैसे मिस्र में दशकों पुराना सहयोगी मुबारक शासन था, लेकिन लोग सड़कों पर लोकतंत्र मांग रहे थे। तो क्या करें, स्थिरता चुने या लोकतंत्र का साथ दें? लीबिया में जब गद्दाफी ने अपने ही लोगों पर हिंसा शुरू की, तो अमेरिका ने नाटो के नेतृत्व में एक मल्टीलैटरल सैन्य हस्तक्षेप का समर्थन किया नरसंहार रोकने के लिए। लेकिन उसके बाद लीबिया में जो अस्थिरता आई, उसकी भी आलोचना हुई।
और सीरिया, सीरिया का मामला तो बहुत ही पेचीदा हो गया।
सीरिया सबसे जटिल और दुखद मामला साबित हुआ। क्लिंटन और उस समय के CIA डायरेक्टर डेविड पेट्रियस ने राष्ट्रपति ओबामा को सलाह दी थी कि जो उदारवादी सीरियाई विद्रोही हैं, उन्हें हथियार और ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो असद का मुकाबला कर सके और जो चरमपंथी ग्रुप थे उन्हें जगह बनाने से रोकें।
लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
नहीं, ओबामा प्रशासन ने सीधे हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। डर था कि हथियार गलत हाथों में चले जाएंगे या अमेरिका एक और लंबे युद्ध में फंस जाएगा। क्लिंटन अपनी किताब में मानती हैं कि इस हिचकिचाहट ने वहां एक खालीपन छोड़ा, जिसे बाद में आइसिस जैसे क्रूर समूहों ने भर दिया।
ये दिखाता है कि कैसे अच्छे इरादों वाले फैसलों के भी अनपेक्षित और दुखद परिणाम हो सकते हैं।
हाँ, और ये भी कि एक प्रशासन के अंदर भी कितनी गहरी असहमतियां हो सकती हैं।
इन सारे अनुभवों को देखते हुए, अगर हम क्लिंटन के काम करने के तरीके, उनके मूल दर्शन की बात करें, तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं?
देखिए, पहली बात तो ये कि वो अमेरिकी नेतृत्व को ग्लोबल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के लिए जरूरी मानती थीं।
अच्छा।
उनका मानना था कि दुनिया की बड़ी चुनौतियां, चाहे वो आतंकवाद हो, क्लाइमेट चेंज हो या महामारी, ये कोई एक देश अकेले नहीं सुलझा सकता। लेकिन अमेरिका की सक्रिय भागीदारी के बिना भी इनका हल निकालना मुश्किल है। इसलिए अलग थलग रहने या अकेले चलने के बजाय उन्होंने सहयोगियों के साथ मिलकर काम करने, गठबंधन बनाने पर बहुत जोर दिया।
और वो स्मार्ट पावर वाली बात, वो उनकी कार्यशैली का हिस्सा थी।
हाँ, वो सिर्फ एक नारा नहीं था। उन्होंने कोशिश की कि विदेश नीति के हर पहलू में कूटनीति, आर्थिक साधन, सांस्कृतिक प्रभाव, कानूनी तरीके और सैन्य विकल्प, इन सब का एक समझदारी भरा मिक्स इस्तेमाल हो। इसका एक और पहलू था, विचारधारा पर व्यावहारिकता को तरजीह देना।
इसका क्या मतलब हुआ? क्या इसका मतलब मूल्यों से समझौता था?
नहीं, ऐसा नहीं। अमेरिकी मूल्य जैसे लोकतंत्र, मानवाधिकार, वो उनकी नीति को गाइड तो करते थे, लेकिन वो मानती थीं कि सिर्फ आदर्शों से दुनिया नहीं चलती, आपको जमीनी हकीकत देखनी पड़ती है।
तो
इसका मतलब था ईरान जैसे विरोधी संभे जाने वाले देशों से भी बात करने की इच्छा रखना, ऐसे सहयोगियों के साथ काम करना जो शायद हर पैमाने पे खरे न उतरते हों, और कभी कभी कम बुरे विकल्प को चुनना ताकि कुछ तो प्रोग्रेस हो।
कूटनीति में वो व्यक्तिगत रिश्तों को कितना महत्व देती थी?
बहुत ज्यादा। वो मानती थीं कि विश्वास और समझ बनाने के लिए नेताओं के बीच लगातार पर्सनल कॉन्टैक्ट जरूरी है, सिर्फ बड़ी बड़ी समिट्स में मिलने से काम नहीं बनता। उन्होंने इसे शू लेदर डिप्लोमेसी कहा।
शू लेदर डिप्लोमेसी मतलब?
मतलब जमीनी स्तर पर मेहनत करके आमने सामने बैठकर रिश्ते बनाना। उनका मानना था कि संकट के समय यही व्यक्तिगत रिश्ते काम आते हैं।
और एक और बात जो आपने बताई, महिला अधिकारों को उन्होंने सिर्फ एक नैतिक मुद्दा नहीं बल्कि एक रणनीतिक जरूरत बताया, ये एक दिलचस्प नजरिया है।
हाँ, ये उनके कार्यकाल का एक बहुत अहम हिस्सा था। उनका तर्क था कि महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों में भागीदारी बढ़ाना सिर्फ सही काम नहीं है, बल्कि ये देशों को ज्यादा स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बनाता है।
अच्छा, कैसे?
उनका मानना था कि जो समाज महिलाओं को दबाते हैं, वहां अस्थिरता और चरम पंथ पनपने का खतरा ज्यादा होता है। इसलिए महिलाओं के अधिकार मानवाधिकार तो हैं ही, वे राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मसला है।
चलिए अब उन तीन खास घटनाओं या मोड़ों पर आते हैं जिन्हें उनके कार्यकाल का टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। पहला तो शायद ओसामा बिन लादेन वाला छापा ही होगा।
बिल्कुल, मई 2011। किताब में व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम का माहौल एकदम जीवंत हो उठता है। इंटेलिजेंस में मतभेद थे, राष्ट्रपति ओबामा के सलाहकार बंटे हुए थे, कुछ हवाई हमले के पक्ष में थे, कुछ छापे के खिलाफ थे, क्योंकि सबूत 100% पक्के नहीं थे और पाकिस्तान के साथ संबंध बिगड़ने का डर था।
और क्लिंटन?
क्लिंटन ने बहुत मजबूती से छापे का समर्थन किया। उनका मानना था कि ये मौका चूकना नहीं चाहिए। अंत में ओबामा ने वो साहसिक फैसला लिया। ऑपरेशन के दौरान का तनाव, हर पल की अनिश्चितता और फिर सफलता की खबर, ये दिखाता है कि टॉप लेवल पर फैसले लेना कितना जोखिम भरा और दबाव वाला काम है।
दूसरा टर्निंग पॉइंट शायद अरब स्प्रिंग से निपटना रहा होगा, खासकर मिस्र, लीबिया और सीरिया।
हाँ, ये एक ऐसी सिचुएशन थी जहाँ कोई आसान जवाब थे ही नहीं। मिस्र में, जैसा हमने कहा, अमेरिका मुबारक का पुराना सहयोगी था, लेकिन लोग सड़कों पर थे, क्या करें। लीबिया में गद्दाफी की धमकी के बाद नरसंहार रोकने के लिए नेटो के नेतृत्व में हस्तक्षेप का फैसला हुआ। ये मल्टीलैटरल था, लेकिन बाद में लीबिया में जो हुआ उसकी भी आलोचना हुई।
और सीरिया तो और भी पेचीदा हो गया।
सीरिया में स्थिति सबसे दुखद रही। क्लिंटन और पेट्रियस ने उदारवादी विद्रोहियों को हथियार देने की सलाह दी थी, जैसा हमने डिस्कस किया।
हाँ।
लेकिन ओबामा प्रशासन ने वो रास्ता नहीं चुना। क्लिंटन मानती हैं कि इस वजह से वहां जो खालीपन बना, उसे आइसिस जैसे ग्रुप्स ने भर दिया। ये दिखाता है कि कैसे फैसलों के अनपेक्षित परिणाम हो सकते हैं और अंदरूनी असहमतियां भी कितनी गहरी हो सकती हैं।
और तीसरा निर्णायक मोड़ आप किसे मानेंगी?
मैं चुनूंगी एशिया पिवट के संदर्भ में हुई चेन ग्वांगचेंग घटना को। ये अप्रैल 2012 की बात है।
अच्छा, क्या हुआ था?
अमेरिका एशिया पर फोकस करने की रणनीति बना रहा था, ठीक उसी समय जब क्लिंटन एक अहम सालाना मीटिंग के लिए बीजिंग पहुंचने वाली थी। चीन के एक मशहूर मानवाधिकार वकील शेन ग्वांगचेंग, जो नेत्रहीन थे और घर में नजरबंद थे, वो किसी तरह भागकर बीजिंग में अमेरिकी दूतावास पहुंच गए और शरण ले ली।
अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक संकट खड़ा हो गया होगा। एक तरफ चीन से अहम बातचीत, दूसरी तरफ मानवाधिकार का सीधा मामला।
बिल्कुल, बहुत ही नाजुक स्थिति थी। क्लिंटन ने इसे पर्सनली हैंडल किया। उन्होंने चीनी अधिकारियों के साथ घंटों लंबी गहन बातचीत की, ताकि चेन ग्वांगचेंग से सुरक्षा भी हो और उन्हें चीन छोड़कर अमेरिका आने की इजाजत भी मिल जाए।
और वो कामयाब रही?
हाँ, आखिरकार एक समझौता हुआ और चेन अमेरिका आ पाए। ये घटना दिखाती है कि कैसे हाई लेवल डिप्लोमेसी में आपको मानवाधिकारों और राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन साधना पड़ता है, और कैसे कभी कभी व्यक्तिगत हस्तक्षेप संकट टाल सकता है।
इन सभी अनुभवों से हम आम लोग अपने जीवन के लिए क्या सबक ले सकते हैं?
मुझे लगता है सबसे पहला सबक तो यही है कि जरूरी फैसले अक्सर अधूरी जानकारी और अनिश्चितता के बीच ही लेने पड़ते हैं।
ये तो है।
चाहे वो ग्लोबल लीडर हो या हम, अपनी जिंदगी में शायद ही कभी हमारे पास पूरी पिक्चर होती है। ऐसे में अलग अलग नजरियों को सुनना, विकल्पों पर ठंडे दिमाग से सोचना, शॉर्ट टर्म रिस्क और लॉन्ग टर्म गोल को तौलना, ये सब जरूरी हो जाता है, लेकिन आखिर में फैसला लेने की हिम्मत दिखानी पड़ती है।
तैयारी और लचीलेपन का महत्व भी साफ दिखता है।
हाँ, क्लिंटन अपनी डिटेल तैयारी, वो ब्रीफिंग बुक्स के लिए जानी जाती थी, ये दिखाता है कि किसी भी चुनौती के लिए होमवर्क कितना जरूरी है। और साथ ही 2008 का चुनाव हारने के बाद ओबामा का ऑफर स्वीकार करना और उनके साथ असरदार ढंग से काम करना, ये जबरदस्त प्रोफेशनल लचीलापन दिखाता है।
ये सिखाता है कि पर्सनल निराशाओं से ऊपर उठकर बड़े लक्ष्य के लिए कैसे काम किया जाए।
रिश्तों को बनाने का सबक भी काफी अहम लगता है।
बिल्कुल, चाहे विरोधी हों या सहयोगी, उनके साथ एक वास्तविक मानवीय रिश्ता, एक विश्वास बनाना, ये बातचीत और सहयोग की नींव रखता है। और ये सिर्फ डिप्लोमेसी में ही नहीं, हमारे काम या निजी जीवन में भी उतना ही सच है, जहां हमें दूसरों के साथ मिलकर कुछ करना होता है।
और शायद एक बड़ा सबक ये भी है कि जटिलता को स्वीकार करना सीखें। दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। बिल्कुल सही कहा, विदेश नीति की तरह ही जिंदगी में भी शायद ही कभी एकदम सही या एकदम गलत वाले ऑप्शन होते हैं। अक्सर हमें अलग अलग मूल्यों या हितों के बीच बैलेंस बनाना पड़ता है। ये समझना कि हर फैसले के अनचाहे नतीजे हो सकते हैं और दुनिया हमेशा साफ सुथरी कैटेगरीज में बटी नहीं होती, ये हमें ज्यादा यथार्थवादी और शायद ज्यादा सहनशील बनाता है।
तो इस पूरी चर्चा के अंत में अगर हमें तीन मुख्य बातें या कहिए कि अंतर्दृष्टियां निकालनी हो तो वो क्या होंगी?
मेरे ख्याल से पहली होगी एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। वो ये कि कूटनीति और लीडरशिप सिर्फ पॉलिसी और स्ट्रेटजी का खेल नहीं है, इसका एक गहरा मानवीय पहलू है। इसमें संकटों का इमोशनल बोझ उठाना शामिल है। टॉप लेवल पर भी पर्सनल विश्वास और रिश्तों का बहुत बड़ा रोल होता है, और नाकामियों या निराशाओं के बाद फिर से खड़े होने के लिए जबरदस्त लचीलेपन, रेजिलियंस की जरूरत होती है।
ठीक है, और दूसरी एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि क्या होगी?
वो होगी स्मार्ट पावर के कॉन्सेप्ट का महत्व। आज की जो जटिल दुनिया है, उसकी चुनौतियों का सामना करने के लिए, चाहे वो देश हो या कोई संगठन, सिर्फ एक ही तरह की ताकत जैसे फौज या पैसा, उस पर निर्भर रहना काफी नहीं है।
सही।
असर डालने के जितने भी तरीके हैं, डिप्लोमैटिक, इकोनॉमिक, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल, नैतिक, उन सब का होशियारी से, लचीले ढंग से, सिचुएशन के हिसाब से सही मिक्स इस्तेमाल करने की क्षमता ही असली ताकत है।
और अंत में एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि, सबके लिए लागू होने वाली बात।
वो ये कि लीडरशिप का मतलब ही है हार्ड चॉइसेस, यानी कठिन चुनाव करना, अक्सर तब जब आपके पास सारी जानकारी न हो और कोई भी विकल्प परफेक्ट न हो, और चुनाव करने के बाद उनके नतीजों की जिम्मेदारी लेना। जटिल हालात में अगर कुछ प्रगति करनी है तो अक्सर सिद्धांतिक व्यावहारिकता, जिसे अंग्रेजी में प्रिंसिपल प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, उसकी जरूरत होती है। मतलब अपने मूल सिद्धांतों पर टिके रहो, लेकिन तरीकों में लचीले बनो ताकि कुछ अच्छा हासिल किया जा सके। ये किताब यही दिखाती है कि ग्लोबल स्टेज पर लीड करना कितना मुश्किल, दबाव भरा और नैतिक रूप से चुनौतीपूर्ण काम है, जहां आसान जवाब शायद ही कभी मिलते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ, जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अगाथा फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।